और हम्द के माने हमने आपके सामने ये रखे थे कि हम्द में बुनियादी तौर पर तीन मफाहीम पाए जाते हैं। पहला मफहूम है तारीफ का, दूसरा है शुक्रिया का, थैंकफुलनेस तशक्कुर का, और तीसरा है परस्तिश का। इस वजह से हम्द का तर्जुमा कोई एक लफ्ज़ नहीं हो सकता। यानी हम्द जब आप कर रहे होते हैं तो आप ये बता रहे हैं, बताना चाह रहे होते हैं कि खुदा काबिल तारीफ़ है अपनी सिफात की बुनियाद पर, खुदा लायक तशक्कुर है उन एहसानात की बुनियाद पर जो उसने हम पे किए, और खुदा लायक परस्तिश है इसलिए कि उसके अलावा दर हकीकत कोई नेमत का देने वाला नहीं है और किसी शय का मालिक नहीं है कि उसके आगे झुका जाए। जब ये तीन कंसेप्ट और मफाहिम, अच्छा मफहूम का मतलब भी मैं थोड़ा सा वाजे कर दूं क्योंकि ज़ाहिर अरबी, उर्दू और इंग्लिश तीन जबानों का हमारा मसला चल रहा है, तो बाज़ औक़ात हम मफहूम का मतलब ये समझते हैं कि हमने जो कोई चीज़ फ़र्ज़ कर ली, मफहूम का मतलब ये नहीं होता है, बल्कि मफहूम मुकाबिल में है महसूस के। यानी महसूस किया कि जिसको आप अपने हवास से देख सकें, टच कर सकें, सेंस कर सकें। उसके बरक्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझी जाती हैं, ठीक है। यानी कि आप, जैसे आपसे कहा जा रहा है मिसाल के तौर पर कि फलां शख्स जो है ये बहुत बुजुर्ग है। अब बुजुर्गी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप टच करें या नाप लें, लेंथ की तरह या मास की तरह या वेट की तरह कोई चीज़ नहीं जिसको आप मेजर कर लें, बल्कि बुजुर्गी एक सिफत है कि जिसका फहम, जिसका कंसेप्ट आपके दिमाग में पाया जाता है। कि जब आपसे कहा जाएगा कि बुजुर्गी, तो आपके दिमाग में फौरन एक चीज डेवलप होगी, नमूदार होगी कि अच्छा बुजुर्गी का मतलब ये, ठीक। तो मफहूम इसको कहते हैं, मफहूम इज बेसिकली द, अस्सलाम वालेकुम, यानी मफहूम वो कंसेप्ट है कि जो हर शक से बालातर होके आपके दिमाग में आ रहे, जो आप बाकायदा एक चीज समझते हैं उसे मफहूम कहते हैं। ना कि मफहूम का मतलब ये है, यानी कि ये मैं इल्मी इस्तेलाह में बात कर रहा हूँ, अरबी में बात कर रहा हूँ। ना कि मफहूम का मतलब ये कि जो हमने फर्ज कर लिया, यूं ही सोच लिया, नहीं। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जिंदगी में हकायक जो आप अपने सेंसेस से दर्क करते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपने समझी हुई हैं, उसकी समझ का एक बाकायदा क्लियर कंसेप्ट आपके पास मौजूद है, ठीक है, उसे मफहूम कहा जाता है। तो हम्द के अंदर तीन मफाहीम पाए जाते हैं। पहला मफहूम कौन सा है? तारीफ का, कि अल्लाह लायक तारीफ है, तारीफ के काबिल। क्यों तारीफ के काबिल है? इसलिए कि उसकी सिफात ऐसी है। यानी मिसाल के तौर पर वो अलीम है, वो कुदरत रखने वाला है, वो जिंदा है, वो रहमान है, रहीम है, करीम है। इन सिफात की बुनियाद पर खुदा लायक तारीफ। तशक्कुर काबिल तशक्कुर क्यों है? इसलिए कि उसने हम पर बेपनाह रहमतों को नाजिल किया, बेशबाह नेमतें अता की, इसलिए काबिल शुक्रिया। लायक परस्तिश क्यों है? इसलिए कि उसके अलावा किसी के पास जाती तौर से कुछ भी नहीं है। यानी जिसके पास जो कुछ है वो सब खुदा का दिया हुआ है, खुदा का दिया है, मालिक हकीकी वो है, तमाम आला तरीन सिफात का मरकज वो है, मबदा और इंतहा वो है, इसलिए वो इस काबिल है कि उसकी परस्तिश की जाए, यानी उसके आगे झुका जाए, अपनी पेशानी को उसके आगे, उसके सामने सजदे में रखा जाए। तो ये हम्द के अंदर ये तीन मफाहीम हैं, तीन कंसेप्ट हैं जो जमा होते हैं, तारीफ, शुक्रिया, परस्तिश। तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम की तमाम हम्द, यानी जितनी भी तारीफ और शुक्रिया और परस्तिश है वो किसके लिए? अल्लाह के लिए। और इसी चीज़ को एक अंदाज से यूं भी समझाया जाता है, समझाया जा सकता है कि मिसाल के तौर पर आप एक किताब है, एक किताब के अंदर आप किसी भी सतर की, किसी चैप्टर की, किसी जुमले की जब तारीफ करते हैं तो दर हकीकत आप किसकी तारीफ कर रहे होते हैं? मुसन्निफ की, जिसने लिखा है। यानी आप कहते हैं क्या अच्छी किताब है, तो अच्छी किताब नहीं दरअसल आप कह रहे होते हैं, बल्कि ये तारीफ आप कर रहे होते हैं कि क्या खूब मुसन्निफ है जिसने इसको लिखा। तो इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह यानी जो तमाम हम्द अल्लाह के लिए है, उसमें कंसेप्ट ये भी है कि आप जिस चीज़ की भी तारीफ करते हैं दर हकीकत वो खुदा की तारीफ है। यानी आप अगर एक फूल को लें और एक फूल की मिसाल के तौर पर आप नज़ाकत की तारीफ करें, उसकी खुशबू की तारीफ करें, उसके कलर्स की तारीफ करें, उसकी खूबसूरती को सराहें, तो आप हकीकतन किसकी तारीफ कर रहे हैं? जिसने फूल को पैदा किया। तो हम्द में एक तो ये तीन कंसेप्ट हैं, और उसके अलावा कंसेप्ट ये है कि अलहम्द यानी सारी हम्द अल्लाह के लिए क्यों है? इसलिए कि आप जिस चीज़ को भी लायक तारीफ समझ के उसकी तारीफ करते हैं, दर हकीकत वो सारी की सारी खूबी किसकी तरफ पलटती है? अल्लाह की तरफ। और यही वो चीज़ है, नज़र है कि जो मासूमीन अलैहिस्सलाम के पास हमें नज़र आती है। कि ये जुमला कई इमामों से, यानी कि दो आइम्मा के मुझे याद आता है, इमाम अली अलैहिस्सलाम और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, कि जिसमें आपने ये फरमाया कि हम मैंने किसी चीज़ को नहीं देखा, मा रअयता शयन, किसी शय को नहीं देखा, मगर ये कि उसके कबल यानी उससे पहले, उसके बाद और उसकी मईयत में उसके साथ साथ खुदा को देखा। ये वो नज़र है जो अल्हम्दुलिल्लाह वाली जो नज़र है वो ये है कि क्योंकि जब ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, इसका ये मारिफत आपके कल्ब में सरायत कर चुकी है, ये हकीकत बन चुकी है, ये सिर्फ वो लफ्ज़ नहीं है जो आप बोल रहे हैं बल्कि एक हकीकत है जिसको आप पहचान रहे हैं, तो फिर इंसान जिस चीज़ को भी देखता है तो उससे पहले, उसके बाद और उसके साथ साथ खुदा को देखता है, और उस वक्त वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके कुछ नुकात जो आपके सामने इसके। अब उसके बाद जो लफ्ज़ आता है रब का, रुबूबियत क्या है? और रुबूबियत या रब में सबसे खास बात यह है कि खुदा की तमाम सिफात में ये वो सिफत है कि जो कुरान करीम में सबसे ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल हुई है। रब, अगर आप गौर करें कि जितनी भी अम्बिया अलैहिस्सलाम की और आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं, उसमें भी खुदा को जिस इस्म के साथ सबसे ज़्यादा पुकारा गया है वो रब है। रब्बी जिदनी इल्मन व अल्हिकनी बिस्सालिहीन, और इस तरीके से रुबूबियत। रुबूबियत क्या है? क्या 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 मतलब है रुबूबियत का? हम आम तौर से रुबूबियत का मायना समझते हैं पालने वाला। अच्छा, ये भी यानी कि ये ऐसे अल्फाज हैं कि जो हम सोच तो लेते हैं लेकिन इसकी गहराई में नहीं उतरते कि पालने वाले से क्या मुराद है, और खुदा अगर पालने वाला है तो उसकी नौईयत क्या है? क्योंकि हम किसी एक तरीके से नहीं पल रहे हैं, यानी पलने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेरा जिस्म ग्रो कर रहा है या मेरे जिस्म को ग़िज़ा मिल रही है, बल्कि इंसान के अंदर कई फैकल्टीज और भी हैं। यानी जैसे हम कहते हैं कि माइंड, स्पिरिट, सोल, बॉडी, ये तमाम की तमाम फैकल्टीज हर इंसान के अंदर पाई जाती हैं, वो सब भी अपने अपने जगह पे ग्रो कर रही हैं। यानी खुदा जो है मिसाल के तौर पर मेरे जहन, मुझे जहनी गजा भी फराहम कर रहा है, मुझे रूहानी गजा भी फराहम कर रहा है, मुझे जिस्मानी गजा भी दे रहा है, सब ये सारी चीज़ें। यानी कि ये एक एटलीस्ट द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट पलने का जो हमारे पास होना चाहिए। लेकिन रुबूबियत के और रब के असल मायना इससे आगे हैं, काफ़ी आगे हैं। इसके कई पहलू हैं रुबूबियत को समझने के। पहला स्टेप कि खुदा ने हमें खल्क किया और किसी मकसद तक, हदफ तक पहुंचने के लिए खल्क किया। ऐसे यही वो चीज़ है ना कि जो असल दीन की जहां से इब्तदा होती है तकरीबन वही बातें बदकिस्मती से हमारी नजरों से हो जा रहे हैं कि इंसान की इंसानियत शुरू कहां से होती है? जब वो अपने बारे में ये तस्लीम कर ले कि खुदा ने मुझे किसी जगह तक पहुंचने के लिए खल्क किया, किसी हदफ के लिए बनाया। वरना अगर इस चीज से पीछे पीछे रहें, इससे नीचे रहें, तो हैवानियत की सतह पर है, इंसानियत के मरहले तक अभी नहीं पहुंचा।
बिल्कुल
इंसान जी, इंसान
बिल्कुल
और हैवान का बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है कि हैवान सिर्फ और सिर्फ अपनी हैवानी जो ख्वाहिशात और तहरीकात हैं उनकी तकमील के लिए जिंदा रहता है, और इंसान अपने असली हदफ को पहचान कर उसके लिए जिंदगी गुजारता है। तो जब तक इन्हें पहली बात समझना कि खुदा ने मुझे पैदा किया और एक हदफ तक पहुंचने के लिए पैदा किया, पहली बात। दूसरी बात कि खुदा ने मुझे जिस हदफ तक पहुंचाना चाहा है उस तक पहुंचने के तमाम टूल्स और इक्विपमेंट मुझे दे दिए हैं, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर हम कहेंगे खुदा ने आपको इसलिए पैदा किया कि आप आसमान में परिंदों की तरह उड़ें, एक मिसाल के तौर पर बात कर। अब आप परेशान, मैं कैसे उड़ूं, खुदा ने तो मुझे पर ही नहीं दिए। भाई मैं देखता हूं कि परिंदे फजा में परवाज करते हैं, अब पर होंगे तो मैं उड़ूंगा ना। तो इसका मतलब है कि खुदा ने मकसद तो क्रिएट कर दिया लेकिन उस मकसद को हासिल करने के लिए मुझे टूल्स नहीं दिए, मुझे वो औजार नहीं दिए, मुझे वो आलात नहीं दिए। नहीं, खुदा ने मुझे एक हदफ के लिए खल्क किया, एक जगह तक पहुंचने के लिए खल्क किया, एक मकसद के लिए खल्क किया, और उस मकसद तक पहुंचने के लिए जो नेसेसरी इक्विपमेंट है वो मेरी जात में और हर इंसान की जात में उसको रखा। दो, तीसरी बात कि यानी जैसे मिसाल के तौर पर आप ये सोचें कि एक जब यहाँ पर जैसे घर हैं कि जिनमें सीढ़ियाँ नहीं है मिसाल के तौर पर, और आप कहें कि वो चौथी मंजिल जो नज़र आ रही है आपको वहाँ तक पहुँचना है। अब आप कहेंगे मैं कैसे पहुँचूँ चौथी मंजिल तक, कोई ना कोई रास्ता भी तो होना चाहिए। तो तीसरी चीज़ क्या कि खुदा ने हदफ के लिए पैदा किया, हदफ तक पहुंचने के लिए जो इक्विपमेंट है वो मुझे दिए और हदफ तक पहुंचने का रास्ता बनाया, राह भी बनाई जिस पर चल के मैं पहुंच सकता हूं। तीन, और चौथी चीज के इस राह पर कैसे चलोगे उसके लिए रहनुमाई और रहनुमा करार दिए, गाइड्स करार दिए। चार, इन चार चीजों का ताल्लुक किससे है, रुबूबियत से। यानी जब आप कहते हैं कि खुदा रब है तो रब होने का क्या मतलब है कि खुदा ने मखलूकात को पैदा किया, खास तौर से इंसान को पैदा किया एक हदफ तक पहुंचने के लिए, ठीक। उस हदफ तक, या अय्युहल इंसान, और ये आयत अगर मुझे सही याद आ रही है सूरह इंशिकाक की आयतें कि ए इंसान तू अपने रब तक पहुंचेगा और जहमतें उठा उठा के, सूरह इंशिकाक 84 है उसकी आयतें। तो इसका मतलब है कि खुदा ने हदफ करार दिया, हदफ तक पहुंचने के लिए जो टूल्स हैं वो दिए, लकद खलकना लिंसान फी अहसन तकवीन, इंसान को खल्क किया बेहतरीन फॉर्मूले पर, यानी वो तमाम की तमाम क्वालिटीज दे दी कि जो आपको हदफ तक पहुंचा सकें। उसके बाद रास्ता बनाया, वो रास्ता क्या है, सिराते मुस्तकीम, और उस रास्ते पर चलने के लिए कामिल रहनुमाई अता की। वो रहनुमाई क्या है, अनअमता अलैहिम और किताब मुबीन। इस हस्ती को कहते हैं रब। तो ये बात वाज़े भी कि खुदा की रुबूबियत का मतलब क्या है, खुदा जो है, और ये रुबूबियत हम कह रहे हैं रब्बिल आलमीन, कि ये रुबूबियत सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, पूरे आलमीन के लिए, जितनी मखलूकात हैं सबको खुदा ने इसी तरीके से खल्क किया है कि बाहदफ बनाया है, बेमकसद किसी चीज को खल्क नहीं किया, मकसद तक पहुंचने के लिए जो चाहिए वो उसकी जात में रख दिया, उसके बाद उस मखलूक और हदफ के दरमियान रास्ता बनाया और रास्ते पर चलने की कामिल रहनुमाई अता की। یہ ہے ربوبیت رب العالمین. تو جب ہم خدا کے لیے کہہ رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ اس تفسیر کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی انشاءاللہ نماز پڑھیں تو کچھ نہ کچھ دماغ میں آئے کر،
تمام مخلوقوں کے لیے، صرف انسان کی،
انسان کے لیے، انسان کا ہدف سب سے اعلیٰ ہے، کہ انسان کا ہدف جو ہے خدا نے خود اپنی ذات کو قرار دیا،
ٹھیک ہے،
اور باقی تمام مخلوقات کا ہدف جو ہے وہ بیچ میں کہیں، لیکن کوئی مخلوق بے مقصد نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین میں جتنا کچھ بنایا وہ تمہارے لیے بنایا، تو باقی مخلوقات کا ہدف کیا ہے؟ انسان کی خدمت. اور انسان کا ہدف کیا ہے؟ کہ الہی بن جانا، خدا کا ہو جانا، خدا تک پہنچ جانا، لقائے پروردگار کو حاصل کر لینا.
وہ چیزیں انسان کو خدا تک پہنچانے کے لیے کا ذریعہ ہیں،
جی وہ وسیلہ بنتی ہیں. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منه. یہ جو سخرا کا یہ تسخیر کا لفظ ہے، یہ بھی بہت بہت مزیدار ہے کہ جو کچھ زمین، آسمانوں اور زمین میں ہے اس کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا. اچھا، مسخر سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ آپ تھوڑا سا آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں. مسخر یا تسخیر سے
تمہارے کنٹرول میں دے، مطلب عام فہمی یہ کہ تمہارے اختیار میں،
اختیار میں دے دیا. اچھا، اب اختیار میں جو چیز ہمارے ہوتی ہے تو اسے ہم جس طریقے سے چاہیں استعمال کریں، استعمال کرو کہ وہ بھی اپنے کمال تک پہنچے، نو ابیوز. صحیح ہے، مسخر میں اس کی پابندی ہے کہ خدا نے جب آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے تمہارے اختیار میں دیا، تو کس لیے دیا؟ خدا کا مقصد کیا ان چیزوں کے لیے؟ خدا کا مقصد کیا ہے؟ کہ ان کے استعمال کو اس طریقے سے کرو کہ وہ بھی اپنے کمال تک پہنچے. اور ان کے ذریعے سے تم اپنے ہدف کو حاصل کرو.
اس میں کچھ چیزیں فار ایگزامپل بالکل جس طرح حرام ہیں، خاص کر اسلام میں، تو ان چیزوں کو پیدا کریں، چیز کا مقصد ہے پیدا کرنے کا، اس میں اس چیز کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کہ جو ہم سمجھتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چیز کو اس پر نظر بظاہر نظر آ رہا ہے کہ
نہیں. جیسے اب مثال کے طور پر، اب ایک چیز ہے وہ تو بہت یعنی کہ واضح ہو چکی ہے کہ فار ایگزامپل زہریلے جانور ہیں. زہریلے جانور ظاہر ہے کہ حرام تو الگ بات رہی، انسانوں کے لیے بہت نقصان دہ مضر، لیکن زہریلے جانوروں کا ایک تو یہ کہ وہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے زہر سے دوا بنائی جاتی ہے اور فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو اوور آل آپ کے ایکو سسٹم میں جو ان کا رول ہے کہ فضا میں پیدا ہونے والے ٹاکسک ایمیشنز کو ابزارب کرتے ہیں. یعنی اگر وہ جاندار نہ ہوں تو آپ کی فضا اتنی زہریلی ہو جائے کہ آپ سانس نہ لے سکیں. تو مطلب حکمتیں پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کس کس مخلوق کی کیا حکمت ہے اور اس کو. لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں، خاص طور سے یہ ارض و سماوات کا جو نظام ہے، کہ اس میں ہر چیز کنورج کرتی ہے انسان کے فائدے کے لیے. یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اس طریقے سے ورک کر رہی ہیں کہ بیسیکلی انسانوں کی زندگی پروموٹ ہو یا سسٹین کرے. تو یہ ربوبیت رب العالمین، کہ ان باتوں کو، دو جملوں کو ہم نے، دو لفظوں کو سمجھا کہ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے، رب العالمین کا کیا مطلب. تو خدا کی ربوبیت انسانوں کے حوالے سے کیا ہے؟ ہدف تک لے جانے والی. اب یہاں پر ایک بڑا اہم جو مسئلہ ہے وہ ہمارے سامنے پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو انسان اپنے لیے کسی ہدف کا قائل نہ ہو، یا اپنی زندگی میں سے ہدف کو نکال دے، وہ در حقیقت ربوبیت خدا سے باہر ہو جاتا ہے. کیونکہ ربوبیت کا مقصد مجھے کھلانا پلانا نہیں ہے، یا صرف مجھے اس قابل نہیں بنانا ہے کہ میں اپنی حیوانی خواہشات کو پورا کروں، بلکہ ربوبیت کیا ہے؟ اسی لیے میں نے اس کی چار شاخیں آپ کو بتائیں. कि रुबूबियत क्या है, कि इंसान को उसके असल एंड तक, मकसद तक पहुंचाया जाए, उसमें हेल्प की जाए, उसमें इंसान और इंसानियत को गाइड किया जाए, तमाम चीज़ें प्रोविजंस उसको अता की जाए। तो वो रुबूबियत परवरदिगार के दायरे से बाहर निकल जाता है, और यही वो चीज़ है कि जो अगर खुदा ना खास्ता ज़्यादा शिद्दत के साथ आगे बढ़ जाए, तो फिर वो इंसान खुदा की सरपरस्ती से निकल कर किसकी सरपरस्ती में चला जाता है, शैतान और तागूत की। और ये चीज कुरान करीम में बिल्कुल वाज़े और क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगरचे क्योंकि खुदा की रहमानियत बेइंतहा है, तो उसने फिरौन से और नमरूद से और शद्दाद से और अबू लहब और अबू सुफियान से भी एक वक्त तक उनका खाना पीना नहीं छीना या बंद नहीं किया, ये उसकी रहमानियत है, लेकिन दर हकीकत वो रुबूबियत खुदा के साए से निकल गए, जो चीज़ उनके एंड में नजर आ गई लाइफ में, कि जो जिस जगह तक जिस अंजाम तक वो पहुंचे, उससे ये बात समझ में आ गई कि जब उन्होंने अपनी जिंदगी से इस चीज को खारिज कर दिया, निकाल दिया कि नहीं मेरा कोई हदफ नहीं, या जो हदफ इलाही है जिसके लिए खुदा ने हम सबको पैदा किया उसको डिनाई कर दिया, तो रुबूबियत हट जाती है। यानी फिर ये जो इंसान की एलिवेशन ऑफ द सेल्फ है, जो रुश्द का अता होना है, फिर ये चीज खत्म हो जाती है, और दर हकीकत वो शख्स या तो वली या शैतान हो जाता है, यानी उसका वली शैतान हो जाता है या उसका वली तागूत हो जाता है। और खुदा ने आयतुल कुर्सी आप पढ़ते हैं, इसमें बहुत क्लियरली बता दिया कि अल्लाहु वलीयुल लजीना आमनु, कि खुदा किसका वली है, ईमान वालों का वली है। ईमान वाला कौन है, कि जो खुदा की बात को कबूल कर रहा है, यानी खुदा के बनाए हुए दिए हुए हदफ को मान रहा है, यहां मैंने कबूल किया, खुदा की पेशकश आपने एक्सेप्ट कर ली, तो ये तो आप मोमिन हैं। अल्लाह वलीउल लजीना आमनु, और फिर खुदा क्या करता है जब उनकी सरपरस्ती कबूल कर लेता है, युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर, उनको मुसलसल। अच्छा, ये जो युखरिजुहुम का लफ्ज है, ये इस्तिमरार यानी कंटिन्यूएशन है, इसका तर्जुमा अगर आप करेंगे तो ये नहीं होगा कि खुदा उन्हें तारीकियों से निकाल के नूर में ले जाता, ये तर्जुमा नहीं होगा, बल्कि खुदा उन्हें तारीकियों से निकालता रहता है नूर की तरफ, मतलब दिस इज अ कंटिन्यूस ऑन गोइंग प्रोसेस, ये नहीं कि एक दफा निकाला और बात खत्म हो गई, ये मुसलसल अमल है जो खुदा की तरफ से होता है, जो विलायत खुदा में चला जाए, यानी जिसका सरपरस्त खुदा हो जाए। और खुदा किसका सरपरस्त होता है, जो मोमिन है। मोमिन कौन होता है, फिर दोहरा दूं, मोमिन वो नहीं होता जो मखसूस काम करे, मोमिन वो होता है कि जो खुदा की बात को कबूल करे। और खुदा ने सबसे पहली बात जो हमारे सामने रखी है वो क्या रखी है, कि मैंने तुमको खल्क किया है, तुमको बनाया है अपने लिए, ये है खुदा की बात जो उसने सारे इंसानों के सामने रखी है। तुम इस रास्ते पर आना चाहते हो, नहीं आना चाहते, अक्सरियत इंसान कहते हैं नहीं आना चाहते, जबान से कहें ना कहें, अपने दिल से, अपने दिल की गहराइयों से, अपने कैरेक्टर से, अपने अमल से ये कह रहे होते हैं कि हमें आपकी पेशकश कबूल नहीं है, जिस रास्ते पर आपने हमें बुलाया हम नहीं आना चाहते। तो उन अफराद के साथ मसला क्या है, कि वो इस रुबूबियत के साए से निकल जाते हैं, और उनको कोई ना कोई शैतान या तागूत उनका हाथ पकड़ के और अपने साथ ले चलता है, और ये चीज इस जिंदगी में भी नजर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि पैगंबर अकरम ने फरमाया है, और ये चीज रिवायतों में आइम्मा की बहुत मरतबा आई है, क्योंकि ये सवाल भी अक्सर सब लोग करते रहते हैं, और मैं कई दफा जवाब भी इसका दे चुका हूँ, कि सही रास्ते पर चलने की या खुदा की राह पर होने या ना होने की सबसे बड़ी अलामत या अलामतें एक दो हैं। वो अलामत, उनमें पहली अलामत क्या है, खुदा के जिक्र की लज्जत और मिठास। यानी इंसान जब भी खुदा को याद करे तो मजा आए, दिल चाहे कि इस याद के साथ कुछ टाइम गुजरे, या बल्कि औलियाए खुदा की कैफियत ये होती है कि वो दुनिया से भागते हैं ताकि उस याद के साथ अपना वक्त गुजार सकें। और ये भी एक चीज़ है जो अपने जहन में रखिएगा कि ये फ़र्क आप देखेंगे कि दुनियादार लोग इंसानों के दरमियान और तफरीह में रहना पसंद करते हैं और औलियाए खुदा तन्हाई को पसंद करते हैं। वो इंसानों की सोबत को लाइक नहीं करते, इन्हें बवक सिर्फ ज़रूरत और मजबूरी की वजह से इंसानों के दरमियान आते हैं, वरना अगर उनको चॉइस दी जाए तो, यानी मैं आम इंसानों की बात कर रहा हूँ कि जो हम जैसे इंसान हैं, वो उसको पसंद नहीं करते। क्यों? इसलिए कि जो दुनियादार शख्स है उसके कल्ब की, उसके दिल की दुनिया वीरान है, अंदर कुछ नहीं है, वीरान है, बंजर है। जब भी वो तन्हाई में होता है, अकेला होता है, तो वो उसकी अपनी जात की, रूह की, नफ्स की वीरानी उसको अजियत और कचोके देती है, वो भागता है। यानी जैसे वो है कि ना, शराब के लिए भी बुनियादी तौर पर यही चीज़ कही जाती है ना कि इसमें अपने तमाम परेशानियों को डुबो दो, ये वो चीज़ है। तो जिसको हम तफरी कहते हैं, एंजॉयमेंट कहते हैं, दर हकीकत ये वो नशा है कि जिसमें इंसान अपने रूह से उभरने वाली अजियतों को डुबो देता है, थोड़ी देर के लिए गाफिल हो जाता है। लेकिन जो वली ये खुदा है, उसके अंदर की दुनिया आबाद है, उसके अंदर बहिश्त है, जन्नत, और बाहर की जो सोहबत है वो उसे उसके मुकाबले में जहन्नम महसूस होती है। तो वो सिर्फ अपने फरीजे की अदायगी के लिए, अपनी जरूरियात के लिए, अपने जो बुनियादी अरकान है उनको पूरा करने के लिए लोगों के दरमियान आता है, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है वो उस जन्नत को ज्यादा एंजॉय करना चाहता है कि जो उसके वजूद में पाई जाती है, उस लज्जत को ज्यादा एंजॉय करना चाहता है कि जो उसे खुदा की याद से हासिल होती है। ठीक है, ये सारी अलामतें हैं कि पैरामीटर्स हैं कि जिस पर आप गेज करते चले जाइए, यानी अपने आप को। जाहिर है किसी दूसरे का तो हमें नहीं पता कि दूसरा क्या है और क्या नहीं, अपने आप को। इसी तरीके से पैगंबर अकरम ने एक खास तौर से बात बयान फरमाई कि इंसान के इस चीज के लिए कि खुदा ने उसको हिदायत अता कर दी है, एक बहुत बड़ा पैमाना यह है कि इस दुनिया से उसका दिल उचाट हो जाए और आखिरत की तरफ मुतवज्जे हो जाए। यानी उखरवी नेमतों, लज्जतों, करामतों को ज्यादा चाहे और दुनियावी नेमतों की हैसियत उसकी नजरों में कुछ न रहे। क्योंकि ये क्या है, मैं आपको एक दो छोटे छोटे वाकयात सुनाऊं, बात यहां तक आई। ये एक आलिम दीन ने मुझे सुनाया है वाकया, काफ़ी कदीम, शायद जारचूई साहब का वाकया, कि उनको कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि मजलिस आपसे पढ़वानी है, और बाहर उन्होंने कबूल किया, उनको साथ ले गए। अच्छा, वो ने महसूस किया कि ये मुझे ले जा रहे हैं, आबादी से बाहर निकल आए हैं, कुछ अजीब सा माहौल है, सन्नाटा, वीराना, परेशान बेचारे बैठे रहे। बहरहाल पहुंचे वहां, जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग बहुत थोड़े से नजर आ रहे हैं, लेकिन महसूस हो रहा है कि मजमा काफी कसीर है। उन्होंने मजलिस पढ़ी, मसाहिब बयान किए, गिरिया करने की आवाजें भी बहुत बुलंद हो रही थी, नजर नहीं आ रहे थे लोग। तो उसके बाद जब वो वापस, जो मेजबान थे जो बुला के, उन्होंने कहा कि कुछ तबर्रुक दिया, तबर्रुक में बिस्किट्स दिए उन्होंने, और कहा कि हम जिन्नात हैं और मतलब हम अपनी महफिल में आपको बुलाया। और जब वो बिस्किट्स उन्होंने अपने रुमाल में लपेट के रख लिए, तो उन्होंने इसरार किया कि आप इसको यही खा लें, घर ना ले जाएं। तो शायद एक आध उन्होंने खाया, लेकिन लेके वापस आए तो जब घर पहुंच के उन्होंने रुमाल खोला तो वो बिस्किट जो था वो कोयला था, कोयले जैसी कोई चीज था। अब इसमें मतलब क्या है कि खुदा ने जिस मखलूक को जिस चीज से पैदा किया है उसकी गजा और उसकी हर चीज दर हकीकत वही है। सही, यानी कि जैसे जिन्नात किससे, आग के शोले से पैदा हुए, तो अब उनकी तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो कन्वर्ज होती हैं आग पे। इंसान किस चीज से पैदा हुआ है? मिट्टी से। आग के पास जितना सब कुछ है वो सिर्फ मिट्टी है। जितने खजानों के पीछे लोग भाग रहे होते हैं ना, ये सिवाय मिट्टी के ढेर के और कुछ भी नहीं है। वो रूह, देखें इंसान को खुदा ने किन दो चीजों का मरकब बनाया ना, लकत खलक नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, मिट्टी के खुलासे से, मिट्टी पानी, और फ़ाइज़ा सवाई तो हूँ, इस मिट्टी पानी के पैकर को दुरुस्त किया, व नफ़ख तो फी है मैं रूही, और उसमें क्या चीज़ फूंक दी, रूह नहीं अपनी रूह, रूह नहीं अपनी रूह। तो इंसान की असल रूह ही है या मिट्टी और पानी है? रूह खुदा है, रूह नहीं है, रूह खुदा है। ये वो चीज है कि जो हमेशा बाकी रहने वाली और हमेशा ऊपर जाने वाली है। और जो आपका जिस्म है, इस जिस्मानियात से मुताल्लिक आप जितनी चीजें जमा कर लें, वो दर हकीकत क्या है? मिट्टी, मिट्टी का ढेर।
तो जी तो मतलब ये और क्या इंतजार है सलाम समझाने के लिए कि मुजिस्मा क्योंकि इंसान विजुअलाइज कर सकता है कि वो इस तरह का मुजिस्मा बनाया और
नहीं,
इसमें इसी मिट्टी के
इसमें इसमें बहुत गहरे माना है। गहरे माना ये है कि जितनी भी चीजें खल्क हुई हैं यहाँ से और हो रही हैं, वो सब की सब उनकी बुनियाद मिट्टी से,
इसी मिट्टी से
मिट्टी से। हाँ ये मिट्टी है, यानी आप जैसे इन्हें मिसाल के तौर पर आज आपके जो कंप्यूटर है वो क्या है? सिलिका है, सिलिका मिट्टी, यानी ये तो डायरेक्ट मिसाल है। बाकी जितनी चीजें हैं जैसे आपकी गजा है, खाना है, पीना है, मादनियात हैं, सब कुछ है, वो सब क्या है? वो सब इसी से ही, यही मिट्टी। तो इसको समझाने का मतलब यह है कि खुदा ने जब इंसान को जिस्मानी तौर पर खल्क किया तो इंसान जिस्मानी तौर पर इन सब का निचोड़ है, यानी जितनी भी चीजें मिट्टी से पैदा होती हैं, जितनी भी क्वालिटीज मिट्टी में पाई जाती हैं, इंसान जाहिरी तौर पर उन जाहिरी सिर्फ जाहिरी तौर पर जाहिरी जिस्म उसका निचोड़ और खुलासा है। इसीलिए आप देखते हैं कि ये जिस्म इतने अजीब और गरीब काम कर जाता है कि जो होश से समझ से बाहर है। और इस जिस्म के साथ जो दूसरी चीज है रूह है खुदा, वो इसके अलावा। तो इमाम अलैहिस्सलाम का, सातवें इमाम का एक जुमला है कि तुम्हारे बदनों की कीमत, बदन की कीमत बेहिश्त है, बदन की कीमत जी, तुम्हारे बदन की कीमत बेहिश्त है, तो ख्याल रखना कि इससे कम किसी कीमत पर ना फरोख करना। तो मीर बाकरे दामाद बहुत बुजुर्ग आरिफ और आलिम गुजरे, उन्होंने इस रिवायत पे यही टुकड़ा आगे लगाया कि तो अब इस पर गौर करो कि तुम्हारी रूह की क्या कीमत है, कि जब इमाम फरमा रहे हैं कि बेहिश्त की नेमतें तो तुम्हारे इस बदन का बदला है, बदन से जो तुमने काम किया उसकी जजा ये बेहिश्त, तुम्हारी असल हकीकत की जजा और हदफ ये बेहिश्त नहीं है। रूही, रूह खुदा, रूह खुदा का हदफ क्या है? सिर्फ खुदा है। तो ये एक नुक्ता है जो बहुत अहमियत के साथ समझने वाला है कि रुबूबियत क्या है, अरकान रुबूबियत क्या है, और जो यानी इंसानों में से कुछ जो इन अरकान रुबूबियत के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज नहीं करते, वो दर हकीकत रुबूबियत के साए से बाहर निकल जाते हैं। और ये चीज कब नजर आती है? जब वो अपनी लाइफ को एंड कर रहे होते हैं। और इसका पता कैसे चलाया जा सकता है? इन दो तीन चीजों के जरिए से जो मैंने आपको बताई, कि जिस इंसान से खुदा अपने जिक्र की लज्जत को हटा ले, इसका मतलब है खुदा की विलायत का साया उसके सर पे नहीं है। जिस इंसान को खुदा छोड़ दे दुनिया में उलटने पुलटने के लिए, इसका मतलब है कि खुदा ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। ये बिल्कुल वाज़ह तौर से पैगम्बर अकरम और अम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम की अहादीस से ये बात वजाहत के साथ नजर आती है। तो ये रुबूबियत की अरकान रुबूबियत क्या है, और खुदा की रुबूबियत दर हकीकत जो विलायत है, खुदा की सरपरस्ती है, उसके अंदर इंसान होता है और कभी बल्कि ज्यादातर केसेस में उससे बाहर निकल जाते हैं लोग। और वो जो पल रहे होते हैं तो या शैतानत के असर के तहत पल रहे होते हैं या तागुतियत के असर के तहत पल रहे होते हैं।
एक और सवाल है लगा कि जैसे आपने कहा कि खुदा अल्लाह के मैंने अपनी रूह अपनी, तो क्या खुदा की रूह करप्ट हो सकती है?
नहीं होती, कभी नहीं होती।
फिर इंसान क्यों करप्ट हो जाता
नफ्स करप्ट होता है। ये
है?
बहस
ये
कहीं
तो
और चली जाएगी। हाँ,
अच्छा भी रहने
मतलब ये कि थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी।
ठीक है
वो कभी करप्ट नहीं होती, यानी कि
फिर
फितरत जो है ना, जैसे फितरत है
ये
वो
तो
हमेशा बाकी रहती है। जी अच्छा, अब एक टुकड़ा और आज पढ़ लेते हैं। मालिके यौमिद्दीन, और यहाँ पर आके यानी कि बंदा जब खुदा के बारे में अपने तासुरात और अपने ख्यालात का इजहार करता है, तो ये तीन जुमले हैं कि जिसके बाद फिर बात एंड हो जाती है। कि सूरह हम्द, जैसे मैंने कहा कि उसके तीन या चार हिस्से जो मैंने बयान किए थे, पहला हिस्सा क्या है कि जिसमें हम और आप खुदा के बारे में अपने नज़रियात बयान कर रहे होते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पहला, रब्बिल आलमीन दूसरा, मालिक यौमिद्दीन तीसरा। यानी हम खुदा के बारे में अपने तीन कंसेप्ट्स बयान करते हैं शुरू में, कि जितनी भी तारीफ, शुक्र और परस्तिश है वो सब की सब मैं सिवाय खुदा के और किसी अल्लाह के सिवा उसका कोई और मकाम नहीं पाता। रब्बिल आलमीन रुबूबियत, कि वो खुदा जो मेरी रुबूबियत कर रहा है सिर्फ मेरी ही लिए रब नहीं है बल्कि तमाम आलमीन का रब है। यानी कि अच्छा, और ये एक चीज़ और ख़ास तौर से मैं आपको बताऊं कि इस जुमले के अंदर एक आजिज़ी और इनकसारी का पहलू भी आता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र है सूरह बकरा और शायद आयत 124 है। इज़ क़ाला लहू रब्बुहू अस्लिम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इज़ जब क़ाला कहा लहू उसको या उसके लिए रब्बुहू उसके रब ने, अस्लिम तस्लीम हो जाओ झुक जाओ। इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि खुदा अगर किसी से भी फर्स्ट पर्सन में कलाम करे, ये बहुत आला मेयार है। यानी कोई बंदा इस जगह तक पहुंच जाए, उसका लेवल इतना हाई हो जाए कि खुदा उससे मुतकल्लिम के तौर पर, जैसे एक और एक आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, तो ये बहुत बहुत आला मेयार की बात है। जैसे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहली दफा तशरीफ ले गए, तो उस वक्त आयत क्या आई? इन्नी अनल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, और नहीं है कोई माबूद मगर मैं। या अना यानी हम में आ रहा है, यहाँ भी इन्नी नहीं है, यानी मैं नहीं हम। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि कोई बंदा ऐसा है कि जिसे खुदा खुद तौहीद बता रहा है। सही, ये दूसरे मकाम आते हैं जो हमारे वहम व तसव्वुर से बालातर हैं। कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर हैं तो इरशाद हो रहा है इन्ननी अनल्लाह, यानी ये नहीं कि कोई अल्लाह है उसको मान लो, मैं खुदा हूं, यानी इसका मतलब वो सामने है जिससे बात हो रही है।
इसमें दरमियान में कोई
ला
सोर्स
इलाहा
नहीं है,
इल्ला अना नहीं होगा सोर्स, क्योंकि अना है।
इवन मासूमी फॉर एग्जांपल सोर्स हो सकते हैं?
और मुझे नहीं पता इसका, यानी क्योंकि इसकी वजाहत नहीं है, हो सकता है
नहीं है,
कि वो। जी
अना ना जो है वो हम वाला नहीं है। अना मतलब मैं, इन्नी मतलब मेरा,
नहीं,
मैं
इन्ननी
सिंगुलर
इन्ननी बज़ाहिर यही है कि आप जब सिंगुलर में भी बात करते हैं तो अना ही कहते हैं, लेकिन इसमें है एक, अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि बात चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हम तफसील में इस वक्त जाना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब खिताब हो रहा है तो इज़ क़ाला लहू, ये बिल्कुल वाहिद है, लहू उससे, रब्बहू उसके रब ने, अस्लिम तस्लीम हो जाओ, बहुत आला मकाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब में ये नहीं कहते कि जी हाँ मैं तस्लीम हो गया, قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ابراہیم نے جواب میں یہ کہا کہ میں تسلیم ہو گیا عالمین کے رب کے لیے. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں, خدا نے, میرے رب نے مجھے اتنی عزت دی, اتنا مقام دیا کہ تمام تعریفیں اس کے لیے جو میرا رب ہے. یہ نہیں کہہ رہے آپ, بلکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, اس کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. یہ ایک طرف عاجزی اور انکساری کہ خدا نے مجھے یہ فضیلت دی, یہ معرفت عطا کی, یہ کلمات عطا کیے, لیکن یہ چیز میرے اندر کوئی غرور نہیں ایجاد کر رہی ہے کہ میں عالمین یا دیگر مخلوقات کو اپنے سامنے حقیر سمجھنا شروع ہو جاؤں. تو میں بھی ان کے ساتھ, ان کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے خدا کو اپنا رب تسلیم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف پہلو ہیں ربوبیت میں, رب العالمین. مالکیت, مالک یوم الدین. مالک کسے کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. اچھا, ملکیت جو بس مجھے سمجھانا ہے, ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ میں بہت زیادہ تو نہیں اس پہ جاؤں گا, لیکن جو مین اسینشل کانسیپٹ ہیں وہ ضرور سمجھ لیجئے. ملکیت علمی اصطلاح میں, علمی اصطلاح استعمال کر دوں پھر اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ملکیت بعض اوقات حقیقی ہوتی ہے, بعض اوقات اعتباری ہوتی ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ کچھ ملکیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ریئل ہیں, اور کچھ ملکیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ نے سوچ لی ہیں, فرض کر لی ہیں, اور جب تک آپ کی سوچی ہوئی چیز سامنے ہے, موجود ہے, اس وقت تک وہ ملکیت باقی ہے, اور جب وہ سوچی ہوئی چیز ختم ہو گئی, ختم ہو گئی. جیسے میں اس گھر کا مالک ہوں, یہ حقیقی ملکیت نہیں ہے, یہ اعتباری ملکیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب میں اس کا مالک نہیں تھا, اور ایک دور ایسا آئے گا کہ جب میں اس کا مالک نہیں رہوں گا. یا اگر مثال کے طور پر جو سیل ڈیڈ یا پراپرٹی کے کاغذات ہیں, وہ اعتبار ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مالک ہیں. اگر وہ کاغذات یا وہ اعتبار آپ سے لے لیا جائے, ملکیت بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو ملکیت کی دو قسمیں بنیادی طور سے, ایک اعتباری ہے, ایک حقیقی ہے. اب ایک اس میں تھوڑی سی مثال, کہ ایک تو یہ ملکیت ہے کہ جیسے زمین اور لینڈ اور پیسہ اور پراپرٹی اور یہ اور وہ, یہ سب کیا ہے؟ اعتباری ہے. یعنی کہ ایک کسی خاص چیز کی وجہ سے کہ ایک بینک بیلنس میرا ہے, یہ ایک اعتبار ہے, اس وجہ سے وہ دولت آپ کی ہے, نہیں ہوگا نہیں رہے گی, ختم ہو جائے گی بات. ٹھیک ہے, لیکن مثال کے طور پر میرا جسم, میرے ہاتھ پیر, میری آنکھ, میرے اعضاء جسم کے, کیا اس کی ملکیت بھی اعتباری ہے یا حقیقی ہے؟ ان وے حقیقی, حقیقی حقیقی حقیقی. اس لیے کہ یہ ملکیت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے, کبھی آپ سے جدا نہیں ہوتی. اور ملکیت کیوں ہے؟ خاص طور سے اس لیے کہ کبھی بھی آپ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں, لیکن حقیقی ملکیت ہے نا, یہ اس کی طرح نہیں ہے جیسے گھر آپ کا ہے, یہ گاڑی آپ کی ہے, یہ پراپرٹی آپ کی ہے.
جی
نہیں, وہ تو ایک الگ بات ہے, وہ میں ابھی اس پہ نہیں آ رہا. میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ حقیقی اور اعتباری ملکیت میں فرق کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں صحیح. یعنی کہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ حقیقی ملکیت وہ ہے جو آپ سے جدا نہ ہو, آپ اس سے جدا نہ ہو, اور کبھی بھی آپ کی مرضی کے بغیر خود سے نہ کام کرے. یعنی کہ جب تک آپ نہیں چاہتے اس وقت تک آپ کا ہاتھ نہیں ہلتا, آپ کی آنکھ نہیں دیکھتی. ٹھیک ہے, یہ حقیقی ملکیت کے بیسک فیچرز ہیں. تو خدا کی مالکیت, اب خدا کی مالکیت پہ ہیں کہ وہ حقیقی ہے یا اعتباری. اعتباری ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, اعتباری ہو ہی نہیں سکتی. خدا کی ملکیت کیا ہے؟ حقیقی ہے. یعنی خدا پوری کائنات کا, پوری زندگی کا, اس میں پائی جانے والی ہر چیزوں کا हर चीज का हकीकतन मालिक है, यानी कोई चीज खुदा से अलग नहीं है, जुदा नहीं है, और असलन खुदा की मर्जी के बगैर हरकत नहीं कर सकती। अब यहां पर फिर कुछ बहसें और हैं, उसको हम छोड़ देते हैं फिर, वो वरना वो जबर व कदर की तरफ हम चले जाएंगे। लेकिन ये मालिकियत असल है। मैं इसमें एक चीज बस आपको समझा दूं कि पहले तो मालिकियत के इस मफहूम को समझ लें कि हकीकी और एतबारी क्या होती है, और दूसरा ये कि खुदा ने जो कहा यौमिद्दीन, ये क्यों कहा इसके साथ? यौमिद्दीन का मतलब क्या है? जजा या फैसले के यौम का मालिक। और जो हमारा अकीदा है वो ये कि जजा और फैसले का दिन वो है जिसे हम रोज़े महशर या रोज़े कयामत कहते हैं। क्या खुदा सिर्फ रोज़े महशर का मालिक है? क्या इस रोज का, इस योम का, इस मरहले का मालिक खुदा नहीं है? इसका मालिक कोई और है? और अगर खुदा इसका मालिक है, मालिक हकीकी है, तो वो चीज़ हमें क्यों नज़र नहीं आती? यानी हम नाफरमानी क्यों करते हैं मिल्कियत खुदा होने के बावजूद? ये इतने सारे इंसान जो हैं वो उस रास्ते पर कैसे चले जा रहे हैं कि जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है, अगरचे के मिल्कियत खुदा है। इस जगह पर आकर मसला जो है मिल्कियत से हटकर विलायत का मसला आ जाता है। तो ये विलायत का मतलब है कि ये जो छोटा सा एक ओपनिंग क्रिएट की है खुदा ने, वो छोटी सी ओपनिंग कौन सी है? ये मेरी हयात दुनिया 50, 60, 70 साल की, यानी ये जिंदगी के अंदर एक डॉट है। मेरी और आपकी लाइफ इन्फिनिट है, मैं और आप कभी भी नहीं मरेंगे, हमेशा हमेशा बाकी रहने वाले हैं, मखलूक हैं। उस हमेशी की जिंदगी में एक डॉट भी नहीं है ये जो लाइफ हमारी है, जो दुनियावी जिंदगी। इस जिंदगी में खुदा ने निजाम ऐसा रखा है कि अपनी मालिकियत को पीछे हटा लिया है बजाहिर बजाहिर, और उसकी जगह निजाम विलायत को सामने कर दिया है। विलायत यानी सरपरस्ती, जो मैं अभी आपको रुबूबियत की बात समझा रहा था कि खुदा ने ये चीज यानी ये इख्तियार मुझे और आपको दे दिया है कि अगर चे मैं मालिक हूं और तुम दर हकीकत मेरी इजाजत के बगैर हिल नहीं सकते, और ये चीज कयामत में नजर आ जाएगी कि जब इन लोगों के हाथ पैर और जिल्द और खालें बोल रही होंगी, तब समझ में आ जाएगा कि इसका असल मालिक कौन था। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतने से वक्फे के लिए क्या कर रहा हूं कि अपनी मालिकियत को हटा रहा हूं और उसकी जगह तुम्हें चॉइस दे रहा हूं कि मेरी सरपरस्ती कबूल करते हो या मेरे गैर की सरपरस्ती कबूल करते हो। इससे मालिकियत की नफी नहीं वाकई हो रही है, बल्कि ये सिर्फ एक मोहलत है बहुत मामूली सी मुद्दत के लिए, ताकि ये क्यों है, ये निजाम विलायत खुदा ने क्यों रखा? ताकि इस बात का पता चल जाए कि हर इंसान का मेयार क्या है और उसके मुताबिक उसे आखिरत में जगह मिले अपने मेयार के मुताबिक। लियुहलिका मन हलका अन बय्यना, ताकि जो जिंदा रहे वो भी रोशन दलील के साथ जिंदा रहे और जो हलाक हो वो भी रोशन दलील के साथ हलाक हो जाए। ठीक, तो इस वजह से खुदा ने जो मालिक यौमिद्दीन का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो इससे एक तो मालिकियत समझ लें कि हकीकी मिल्कियत और एतबारी मिल्कियत क्या होती है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों का अपने आप को मालिक समझते हैं लेकिन वो हकीकी मिल्कियत नहीं होती। हकीकी मिल्कियत की एक मिसाल जो हमारे सामने है वो मेरा अपने जिस्म का मालिक होना है, ये हकीकी मिल्कियत से करीब तर है। तो खुदा की मालिकियत और मिल्कियत हकीकी है, मुकम्मल है, लेकिन इस जिंदगी के अंदर खुदा ने उस मालिकियत को पीछे हटा के उसकी जगह विलायत को सामने कर दिया। और विलायत के आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, विलायत खुदा या विलायत शैतान व तागूत। और हम में से हर एक को अपनी चॉइस के साथ कबूल करना है, ये फैसला देना है। और एक चीज मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि पूरी जिंदगी में जिस काम को हम कामिल इख्तियार के साथ अंजाम देते हैं, यानी जिसका खुदा ने इतना इख्तियार दिया है कि उसमें कहीं कोई पाबंदी नहीं है, वो सिर्फ ये चूज करना है कि आपको विलायत खुदा चाहिए या विलायत गैर खुदा चाहिए। इस जगह पर कोई पाबंदी नहीं है, ये 100% हम में से हर एक की अपनी चॉइस है और इस पर मेरी बाकी पूरी जिंदगी का फैसला होगा। ठीक है, तो ये मालिकियत का मतलब आप समझ गए, मालिक यौमिद्दीन, यानी कि उस दिन तो खुदा की मालिकियत 100% जाहिर होगी ही होगी, लेकिन यहां भी खुदा की मालिकियत ये नहीं कि खत्म हुई हुई है, बल्कि सिर्फ बैकड्रॉप में, बैकग्राउंड में। और शायद बात तूलानी हो जाए, लेकिन ये कि सूरह कहफ के अंदर एक वाकया है कि जिसमें एक इंसान का, दो लोगों का, कुछ दोस्तों का वाकया है कि जिनके बाग थे और कुछ दोस्त थे, वो ये कह रहे थे कि ये बाग है, इससे सारे का सारा मेवा समेट लो, किसी गरीब को अपने पास नहीं आने दो और ये इस किस्म की बातें। और एक उनका दोस्त ऐसा था जो ये कह रहा था कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, और मतलब ये कि तुम्हें जो कुछ भी करना चाहिए उसमें खुदा की मर्जी और रजा का ख्याल रखना चाहिए। और जब वो अपने उस बाग में पहुंचे तो उसको आफत ज्यादा और जला हुआ पाया। उस जगह पे कुरान करीम एक आयत टुकड़ा बयान करता है कि अल मुल्कु यौमइज़िन लिल हक, यानी कि उस वक्त उन्हें समझ में आया कि हकीकतन मालिकियत अल्लाह के लिए, ये दुनिया में भी नजर आ जाता है। हाँ, यानी कि बाज़ औक़ात ये चीज दुनिया में भी समझ में आ जाती है कि आप पूरा जोर लगाएं, पूरी प्लानिंग करें और कुछ कुछ से कुछ तो ये समझ में आ जाता है कि असले इख्तियार और इख्तदार जो है वो कहीं और है, उसने हमें दिया हुआ है, उससे गलत फहमी का शिकार नहीं हो जाना चाहिए।
एक सवाल,
जी
मालिक यौमिद्दीन जो है, एक ये मालिक यौमिद्दीन हो गया, सही
जी
है, फिर एक वो विंडो हो गई जो इतनी बड़ी हयात के ऊपर एक हल्की सी एक ओपनिंग
जी
है,
जी
तो उस ओपनिंग के अलावा
जी
जितनी भी जिंदगी है वो तो मालिक की मर्जी से गुजरेगी।
बिल्कुल
तो मालिक ये जब वो हुआ तो वो सिर्फ हिसाब किताब जो छोटी सी विंडो दी है इसका होगा उसमें।
नहीं, यानी मालिकियत का मतलब यह है कि वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि मालिक की मर्जी से ही गुजरेगी, तो मालिक ने अपनी मर्जी भी तो आपको बता दी है ना।
वो तो यहाँ बुलाया आगे करके हमें चॉइस है ना,
जी,
लेकिन जब इस
इसके
विंडो से
आगे,
निकल गए इससे पहले
इससे
और
आगे,
इसके बाद,
इसके ना पहले आपके पास चॉइस थी ना बाद में चॉइस है,
तो उस
यानी
नहीं
इसके
थी
बाद आप, इसके बाद आप इस चॉइस के मुताबिक जिंदगी आपको मिलेगी, लेकिन उस जिंदगी को सेलेक्ट करने में कोई चॉइस नहीं आती।
अच्छा, तो इससे पहले जो थी
इससे पहले जिंदगी नहीं थी, खुदा कहता है वह कुन तुम अमवा था, तुम मौजूद थे लेकिन तुम्हारी हालत जो थी वो मुर्दनी, मुर्दे वाली मौत की हालत थी, मैयत की हालत थी, जिंदा नहीं थे, यानी शऊरी जिंदगी नहीं थी।
स्टार्ट जो है वो लाइफ इस विंडो से है
यहां से
और उसके बाद फिर आगे बढ़े।
जी, उसके आगे की चॉइस नहीं है हमारे आपके पास, यानी एक शख्स ये कहे कि मैं खुदा को छोड़कर और अपनी हैवानी ख्वाहिशात पूरा करूं और आगे भी मुझे यही मिले, ये नहीं हो सकता।
नहीं वो तो सही है, लेकिन मकसद तो फिर वही है ना कि जो कुछ भी यहाँ किया अच्छा या बुरा, जब यहाँ से चले गए तो अब जब जो दूसरे डोमेन में जब पहुंचेंगे
जी,
तो वहां तो जो भी जिंदगी गुजरेगी वो तो
वो सब उसकी
पाबंदीदार है,
मर्जी से, बिल्कुल बिल्कुल,
तो उसकी मर्जी से जो गुजरेगी तो उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा।
हिसाब किताब की बात नहीं है, खुदा को हमसे हिसाब किताब लेना भी नहीं है। खुदा ने हमें हिसाब किताब के लिए पैदा किया है, खुदा ने हमें एक हदफ तक पहुंचने के लिए पैदा किया। मैं थोड़ा सा इसमें जाना नहीं चाहता, चले आपने बात की एक जुमला, लेकिन अब पता नहीं कितनों की समझ में है। इंसानियत की तख्लीक जो है वो लाइफ की मैच्योरिटी है, समझ रहे हैं, लाइफ इन इट्स एवरी फॉर्म, एवरी फॉर्म दैट एग्जिस्ट, पता नहीं इन सो मेनी प्लेसेस, कि वो जिंदगी इर्तका पाते पाते एक ऐसे मरहले पर पहुंची अपने मैच्योरिटी के कि उसमें से वो चीज कली निकल आई जिसमें ये खसूसियत है कि वो खुद अपने बारे में गौर कर सके। अब तक जिंदगी में ये सिफत नहीं पाई जाती थी, समझ रहे हैं, अब तक लाइफ में जो भी लाइफ ओरिजिनेट हुई थी जिस फॉर्म में भी जहां जहां पाई जाती थी उसमें सिर्फ इताअत गुजारी थी, जैसा बना दिया, जिस काम में लगा दिया, वो चीज थी। लेकिन वो डेवलप होते 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 मैच्योर होके उस जगह तक पहुंची कि अब उसमें वो शऊर पैदा हो गया कि उसने ये सवाल किया कि मैं कौन हूं। मन आना मन रब्बुक, मन रब्बुक, मैं कौन हूं, मेरा पालने वाला कौन है, मेरा पैदा करने वाला कौन है, ये इंसान है। तो जैसे आप कहते हैं ना कि इस पूरी जिंदगी के दरख्त का फल इंसानियत है।
और सवाल कर रहा
जी
था कि जब ये लाइफ यहाँ पे स्टोर हो गई तो इसके बाद की
अब
जो
कली
लाइफ
है
है,
ना, अब कली है, अब इसको भी तो
नहीं
बनना है ना।
नहीं सही है, जिन लोगों
जी
ने ये, अब आप मतलब मेच्योरिटी के उस लेवल के ऊपर पहुंच गए जिस लेवल की आप बात कर रहे
आप
हैं,
नहीं पहुंच गए, मतलब ये इंसानियत है, और इस इंसानियत में से आप यकीनन कुछ इंसानों को देख रहे हैं कि जो इस मकाम पर हैं। बाकी
वो
इंसानियत किस तरीके से ट्रांजिशन के मरहले में, ये हमें
नहीं, वो
हमारी
आपकी
समझ।
बात
जी
सही है, आप
जी
टोटली एग्री
जी
के, लेकिन उस स्टेज तक तो इंसानियत पहुंच गई ना कि इट स्टार्ट्स टू क्वेश्चन,
जी
उसमें से कुछ लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर गए हैं और मेजोरिटी नहीं कर पाई है, सही है ना, लेकिन एक मेच्योर लेवल पे ये इंसानियत पहुंच गई। अब इससे आगे जो कुछ भी होगा वो इससे आगे ही होगा ना,
यानी
इस
देखें,
लेवल
नहीं
से
नहीं नहीं
आगे
हम
नहीं।
किसी दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं इस बात का जवाब दे रहा था कि खुदा ने हमें किस लिए पैदा किया, हम असल में हैं क्या। तो हिसाब व किताब जैसे आप कहते हैं ना, ये एक बिल्कुल ज़िमनी सा एक मरहला है। हिसाब
सही है,
किताब के
सही
लिए हम पैदा नहीं हुए,
है,
हम पैदा हुए हैं कि ये कली फूल बने। सही है, हम इसलिए पैदा हुए। ये तो बीच के छोटे छोटा सा एक स्टेप है कि जब आप एक चीज़ बनाते हैं, आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो उस प्रोडक्शन में वेस्ट भी होता है, उस प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे दीगर मराहिल भी आते हैं। ये वो चीज़ है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कि अगर हम उम्मीद कर सकें कि अब वो दौर आने वाला है कि जब ये सेग्रीगेशन हो जाएगा, यानी कि वो लोग जो अपने हदफ को समझ रहे हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, और वो लोग जो हदफ से सिंक्रोनाइज होने को बिल्कुल तैयार नहीं है, वो पीछे खत्म कर दिए जाएंगे।
नहीं अल्लाह की तरफ से है ना,
बिल्कुल। तो
मतलब
इमाम जमान अलैहि
ये
सलाम का जो
अल्लाह
जहूर है,
और जी
ये
अदरवाइज जो लोग का मतलब इमाम के जहूर से पहले गुजर गए, स्पेशली कि जो नॉन
जी
मुस्लिम है जिनको बसाए और गुजर गए, इनका मतलब इनको क्या
देखें,
लगा
इसमें
कि इन्होंने बताया कि
मैं एक बात अर्ज करूं बहुत ईमानदारी से, कि खुदा ने मुझे जो है ना, मैं ये जिम्मेदारी दी है कि मैं लोगों की आखिरत का फैसला करूं, ना खुदा ने मुझे इस बारे में कोई इत्तला दी है किसके साथ क्या होने वाला है। कुछ बेसिक पर माजरत के साथ, मेरे जुमले का बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि होता यह है कि ये जवाब देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। सही है, कुरान करीम में आप पढ़िएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू है खुदा की सूरह मायदा के आखिर में, सूरह मायदा के आखिर में, कि खुदा ये कह रहे हैं कि हम ईसा अपना मरियम से सवाल करेंगे, तुम क्या कह रहे थे अपनी उम्मत से कि तुमको खुदा बना लें, कि तुमको और तुम्हारी माँ को पूजना शुरू कर दें। हजरत ईसा से सवाल होगा, तो हजरत ईसा क्या जवाब देंगे कि जब तक मैं इनके दरमियान रहा तो मैं उनको वही बताता रहा जो तूने मुझसे कहा था, और जब मैं इनके दरमियान में नहीं रहा तो फिर तू इनका वाली वारिस था, तो मुझे तो नहीं पता। और ये तेरे बंदे हैं, तेरी मर्जी अजाब दे, तेरी मर्जी माफ कर दे, मैं क्या कह सकता हूँ, ये कुरान है।
लेकिन
तो
अगर
इस
अगर
तरीके से यानी हम लोग जो है ना, ये जजमेंट हमें, ये फिक्र ही नहीं करना है, फिक्र अपनी करना है। हमारे मसाइल हल हो गए, हम निजात याफ्ता हो गए, मुझे इस जिंदगी में जितना कुछ हासिल करना था मैंने हासिल कर लिया, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, ये फिक्र करना है। अगर हम में से हर इंसान इस फिक्र पे आ जाएगा, पूरा माशरा बेहतरीन हो जाएगा। हम अपनी सोचते नहीं, मैं आपकी सोच रहा हूँ कि इन्होंने ये किया, अच्छा अब इन, खुदा हर मरहले हर लहजा हर लम्हा मालिक है।
इधर पर्टिकुलरली वो क्यों कहा गया कि
इसलिए कहा गया कि ये वो यौम है कि जब हकीकतन खुदा की मालिकियत जाहिर होगी। यानी अभी मैं और आप इस गलतफहमी में पड़े हुए हैं कि मैं इस जमीन का मालिक हूं जिस पर मैं कब्जा करके बैठा हूं, इसलिए दूसरे को दे दूं, गस्प कर लूं, इस दौलत का मैं मालिक हूं इसलिए जो चाहे कर लूं। और क्योंकि अभी खुदा ने अपनी मालिकियत को जाहिर नहीं किया है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मालिकियत के जगह विलायत है और विलायत के लिए चॉइस दी हुई है, तो मैं इस गलतफहमी का शिकार हो रहा हूँ कि खुदा की मालिकियत शायद पाई नहीं जाती। लेकिन इस बात से होशियार और खबरदार रहना कि जब जजा का फैसले का दिन आएगा तब ये मालिकियत जाहिर होगी और उसके मुकाबले में फिर कुछ नहीं कर सकोगे। फिर अगर तुम झूठ बोलोगे, तुम्हारा नफ्स, तुम्हारा वजूद झूठ बोलेगा, तो तुम्हारे आज़ाओ जवारे गवाही देंगे कि ये झूठ बोल रहा है, इसलिए कि तुम अभी इन हाथों को समझ रहे हो कि ये मैं इसका मालिक हूं और जो चाहूं कर लूं। उस वक्त पता चलेगा कि इसका मालिक कौन था। पर ये तुम्हारी बात नहीं मानेगा, उसकी मानेगा जो मालिक की। और सूरह मोमिन की आयत है लेमनिल मुल्कुल यौम, के खुदा उस दिन खुद सवाल करेगा, सवाल किया जाएगा, लेमनिल मुल्कुल यौम, आज के यौम में मुल्क किसका है। फिर खुद ही जवाब देगा, कोई जवाब देने वाला नहीं होगा, खुद ही जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, उस खुदा का है जो वाहिद है। कहार का मतलब जालिम नहीं होता, कहार का मतलब गालिब होता है, डोमिनेंट। तो ये चीज उस वक्त खुदा जाहिर करेगा, अभी नहीं जाहिर कर रहा।
ये
इसलिए
चीज जो फिजिकली हमारे यहाँ पे रह मट्टी से हैं सारे, यहाँ पे
जी
रह जाने हैं, इसी में फिर रूह आके फिर ये जिस्म उठने हैं
ये
ऐसा
एक
नहीं।
अलग टॉपिक है, पता नहीं, वैसे बजाहिर लगता है कि ऐसा नहीं होगा, बजाहिर ये लगता है, यानी कि अगर आप गौर करें कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन
क्योंकि ये भी
है,
अक्सर सुनते हैं ना
इसमें
कि
ट्रांसफॉर्मेशन है,
तमाम इंसान जो है वो अपनी कब्रों से इस तरह उठेंगे जब
इसमें
उनको
तब्दीली आएगी, यानी कि ये जिस्म में कोई ऐसी तब्दीली आ जाएगी कि ये आखिरत के माहौल में जिंदगी गुजार सकेगा।
किस तरह मतलब एक रूह होती है जो फिजिकली मतलब रूह
ये शुरू में मैं बता चुका हूँ, यानी चले मैं एक बहुत छोटी सी मिसाल आपको दे दूं, बस उस पे उस पे उस पे बहुत छोटी सी मिसाल दे दूं। जो जिस्म आप ख्वाब में अपना देखते हैं वो जिस्म नहीं है जो यहाँ पर आपका है, यानी अगर आप इसको समझना चाहें तो ये मिसाल बेहतरीन है। जो जिस्म आप ख्वाब में अपना देखते हैं और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इस जिस्म की नहीं है। तो ये खुदा ने ये बात समझा दी है कि हम और आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हर एतबार से हो रहा है, रूहानी एतबार से